और सबसे बड़ा जिहाद क्या है, अपने नफ्स के साथ जिहाद करना, इसके साथ जिहाद करना, इसको जेर कर देना, इसको नीचा कर देना। इसीलिए आप देखते हैं कि कई सूफिया का भी ये रहा है कि वो ऐसी चीजें जो नफ्स कहता ये मैंने खानी है, ये मुझे चाहिए, उस वक्त उसको वो नहीं देते थे कि तुझे तो मैं हराऊंगा। वो क्या वजह थी? बार दफा वो खैर बहुत ही एग्जेजरेशन कर देते थे कि बिल्कुल ही हलाल चीज से भी अपने आप को महरूम रख लेना और उसको भी अपने ऊपर हराम कर लेना, ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हर ख्वाहिश जो उठे, अब रात के 11 बजे मुझे जी ख्वाहिश उठी जी फलां जगह से मैंने खाना खाना, चलो जी चाबी पकड़ी चलो जी। कभी तो अपने आप को कहें कि नहीं, डिसिप्लिन लाई, नहीं मैंने सुबह उठना है, मुझे सुबह काम है, मुझे फजर है, मेरी तहज्जुद है, वो खराब हो जाएगी, मैं नहीं ये नफ्स की बात सुन सकती, दिल कर रहा है दिल के पीछे अब मैं चल पड़ूं। तो कभी अब अपने आप के अंदर तहिया कर लें कि ऐसा जब मेरा दिल कहेगा ना तो मैंने फिर उस वक्त उसको कंट्रोल कर लेना, क्योंकि इसको ना पाबंदियां अच्छी नहीं लगती, ये चाहता है कि बस मुझे खुला छोड़ दो। अगर शादी करके किसी को सही लगता है तो ठीक है वो करे, अगर शादी अच्छी नहीं लगती ना, ये भी क्या पाबंदी है कि एक के साथ ही राज है, तो चलो जी फिर डेटिंग कल्चर बस इसके साथ, या लिविंग टुगेदर फलां के साथ रह लें फलां, चल के छोड़ देना फिर उसको, फिर देखिए नाम से नहीं इस तरह बंदी हुई जिंदगी गुजारी जाती। समझ आई बात आपको? तो ये कहां तक ले जाता है, ये कोई हटता नहीं है फिर तो। अपने अंदर समझे, एक हमारा दुश्मन बाहर है, एक अपने अंदर बैठा हुआ, और ये बहुत मुंह जोर है, इसको आप खिलाते जाएंगे पिलाते जाएंगे और इसकी ख्वाहिशात पूरी करते जाएंगे तो ये एक बीस्ट बन जाएगा, एक ऐसा वैशी दरिंदा बन जाएगा कि जो हमें खुद ही खा लेगा, फिर ये कहीं रुकेगा नहीं। और मैंने मिसाल दी है ना, आप देखो उनको इसमें नहीं मजा आ रहा, आप तो सारा कुछ औरतों से सारे मजे ले लिए, अब चलो मर्दों के पास ही चले, जानवरों के पास चले और बच्चों के साथ बुरे काम करें, तो फिर रुकती नहीं है ये चीज। इसलिए अपने आप को बांधे, नेकों की मजलिसें इख्तियार करें। नंबर 3, अपने अंजाम के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहें कि मेरा अंजाम क्या होगा, अगर मैं इसकी सुनती रही तो ये मुझे किधर तक ले जाएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं पढ़ने का, टाइम नहीं पढ़ने का, वो इसी के पीछे अपने आप को चुके, यानी इसके आगे खुद को डाला हुआ है, इससे नीचे हुए हैं, खुद ऊपर नहीं हुए कि तू तेरी कैसी मिजाल के तू कहे कि टाइम नहीं, मैं टाइम निकालूंगी। नफ्स कहता सोए रहो, अरे बड़ी अच्छी नींद आ रही, बड़ा मजा आ रहा है, इस वक्त ही तो नींद आई है, सारी रात तो मुझे नींद नहीं आई। नफ्स कहता सोया रहे, बड़ा मजा आ रहा है। तो वही चीज है ना कि ये नफ्स इंसान को कहां कहां पे रोक देता है नेकी से भलाई से, और वहीं जब अपने अंजाम की फिक्र होगी तो इंसान उठेगा। और बाज़ उलमा ने बड़े अच्छा एक तरीका लिखा कि जो जब इंसान का नफ्स जो है ना उसको उठने नहीं देता सुबह, तो फिर कहे कि अच्छा चलो नमाज नहीं पढ़ती, कम से कम बाथरूम तो यूज करना है, चलो बाथरूम यूज किया, अच्छा चलो वुजू कर ही लेती हूँ, नमाज नहीं भी पढ़ूंगी, चलो वुजू तो कर लो, वुजू कर लिया, अच्छा वुजू भी कर लिया है, आंख तो खुली गई है, चलो 2 नफल ही पढ़ लेती हूँ, ज्यादा नहीं, दो सिर्फ 2 नफल पढ़ूंगी, 2 भी पढ़ लिया तो 2 और पढ़ लेती हूँ। इस तरह से करके उसको इंसान अपने काबू में लेकर आए, और ना अगर डायरेक्ट कहेंगे मुसल्ले पे खड़ा ना, हाय नहीं थकन हुई भी है, सारा दिन भी तो गुजरना है, फिर सारा दिन खराब हो जाएगा, नींद खराब हो जाएगी, नींद भी तो लेनी जरूरी है, फिर कितने जहन में बातें आएंगी, बहाने आएंगे, कितना कुछ आएगा, तो उन बहानों को सोच लिया करेंगे, ये नफ्स ना बहाने फेंक रहा है मेरी तरफ, एक के बाद एक बहाना, एक के बाद एक बहाना, क्या करें फिर, ये कंटिन्यू कर नहीं सकेंगे ना। कई लोग कहते हैं नहीं जा फिर मैंने उस वक्त लूंगी जिस वक्त मैं ना सारी जिंदगी कर सकूं, कल का पता नहीं है, इनको गारंटी है नहीं है कल भी जिंदा रहना है, जब सारी जिंदगी नहीं फिर बाद में छोड़ना सही नहीं है ना, तो इसलिए उस वक्त करेंगे ये नफ्स के बहाने, देखो कैसे ही। तो नफ्स हमसे अपनी इताअत ना करवा सके, हमें उसको करना कि वो हमारी इताअत करे, ना कि हम उसकी इताअत करना शुरू कर दें, हम उसके आगे हाथ बांध के ना खड़े हों, उसको ऐसा करना है कि वो हमारे आगे हाथ बांध के खड़ा हो के जो हम कहते हैं वो उसको माने। तो ये दिल दिल मर्जियां मर्जियां ख्वाहिशात मेरा मैं अब ऐसे सोचती हूँ, मैं अब ऐसे करना चाहती हूँ, ये छोड़ दें। मैं मेरी मैं मी माय आई ये सब छोड़ दें, यही नफ्स है। तो ये नफ्स की ख्वाहिश अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्म के बावजूद, तो इसकी फिर सजा क्या है? जो ऐसा बंदा हो जाता है ना, फिर उसने अल्लाह ताला को तो छोड़ दिया और नफ्स का बंदा बन के बैठ गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं खत्म आला समय ही व कल्ब ही, हमने उसकी मोहर लगा दी उसके कानों पे भी, उसकी समाप्त पे। अब कोई बात सुनता भी नहीं। आप ऐसे लोगों को आप जितना मर्जी समझाते रहे, उनको समझ ही नहीं आएगी। ऐसे लगता है कानों के ऊपर ना मोहर लगी हुई है बात। और दिल समझने के लिए है ना, समझ भी नहीं आती, सुनते भी नहीं, सुनाई ही नहीं दे रहा। जैसे यानी आपने सुना भी दिया तो एक कान से गया दूसरे से निकल गया, क्योंकि मोहर लग चुकी है। और सूरह बकरा में अल्लाह तआला ने फरमाया ना, खत्म आला कल्बी ही, क्या उसमें उसमें उलट है ना। तो अल्लाह ताला ने देखें सुभान अल्लाह, यहाँ पे इस चीज को बयान फरमाया कि उनकी समाज के ऊपर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। वहां पे अल्लाह ताला ने समाज को बाद में किया और इसको पहले, क्यों? इसलिए क्योंकि जब इंसान सुन के नहीं मानता, वहां पे खत्म आला कुलूबिहिम वो आला समी, यहाँ पे वो खत्म आला समईहिम वो कल्बिहिम, समईहिम वो कल्बी, वहां पे कुलूबिहिम पहले। क्यों आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए इन्होंने सुन लिया फिर भी नहीं माना ना, तो अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी इनकी समाप्त। सुन के भी जान के भी तब भी ऐसे बन जाना, तो अल्लाह ताला फिर उस बंदे के लिए, क्योंकि इसके पास इल्म था, इल्म के बावजूद उसने ऐसा किया, तो अब इसको हिदायत नहीं मिल सकती, क्योंकि वो ना सुन सकता है ना समझ सकता है। वह जाला आला बसरी ही वैशावा, और वहां पे भी इसी तरह है ना, तो वाला अब सॉरी ही वैशावा, तो वहां पे प्लूरल में है, यहाँ पे सिंगुलर में। तो उसकी कानों के आगे भी पर्दा आ गया, ढांप लिया पर्दे ने, अब उसको कहाँ से हिदायत मिलेगी? फरमाई यहदी मिन बादिल्लाह, क्यों कौन उसको हिदायत दे सकता है अल्लाह के बाद? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया मैं यहदी अल्लाह फला मुदिल्ला, जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको नहीं कोई गुमराह कर सकता। और मैं यहदिल्ला फहुअल मुहतदी, ये भी है कि जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है, हिदायत कहीं और से नहीं मिल सकती। अल्लाह ताला ना हिदायत दे तो उसके बाद कोई हिदायत दे नहीं सकता। तो इनका कसूर क्या था? ख्वाहिशात के बंदे बन के रहना, फिर ये अल्लाह ताला की हिदायत के काबिल भी नहीं रहते, यानी फिर उसके बाद ना ये अपनी सरकशी में ही रहते हैं। इसी तरह जिंदगी आप देख लें, इस वक्त दुनिया जो है, मैं हैरान होती हूँ, अगर आप इर्द गिर्द देखें तो दुनिया ज्यादातर, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुसलमान अपने आप को कहलाए, चाहे मुशरिक है, चाहे कुछ है, ज्यादातर दुनिया जो है वो ख्वाहिश की बंदी है। इवन क्रिश्चियन भी अपनी क्रिश्चियनिटी को छोड़ चुके हैं, वो भी ख्वाहिश के पीछे चल रहे हैं। आप किसी मजहब के बंदे को देख लो, उनमें कम ही लोग रह गए जो अपने मजहब को लेके बैठे हुए हैं। ज्यादा क्या है, एक यूनिवर्सल रिलीजन है, और वो रिलीजन क्या है? ख्वाहिश का बंदा। मेरी ख्वाहिश कहती है ना, तो फिर आप देख लें आज जो आप उसके ऊपर भी सोशल मीडिया पे देख लें, जो जो कुछ हो रहा है, आपको मेरे से ज्यादा पता है क्या क्या चीजें लोग कर रहे हैं। और दिल किया तो ये भी डाल दिया, ये भी कर लिया, अपने घरों की चीजें, अपनी घरों की कोई प्राइवेसी नहीं, हर चीज को लोगों के आगे लेके खड़े हो गए, अपनी प्रेगनेंसी की बातें बता रहे हैं, उसकी फोटो शूट हो रहे हैं, अब इस तरह से करके दिखा दो, बस सिर्फ इन होना है, सिर्फ पैसा चाहिए शायद। तो ख्वाहिश क्या है? पैसे की, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके लिए औरतें क्या क्या कर रही हैं, और किस किस तरह से अपनी बातें बता रही हैं, कैसी कैसी वीडियोज बन रही हैं, कैसे कैसे चुटकुले बन रहे हैं, टिकटॉक में क्या बन रहा है, क्या चीज है? ख्वाहिश के बंदे हैं ना ये सारे, किसी को फॉलोइंग ज्यादा चाहिए, उसके पास पैसा है लेकिन फॉलोइंग चाहिए उसको, अब वो फॉलोइंग के लिए कुछ भी कर रहा है, उसकी ख्वाहिश क्या है? मेरे इतने फैंस हो बस। दूसरा बंदा, उसको पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए कुछ भी मरा जा रहा है, वो चीजें बस जो इस तरह की अजीब ही कोई चीज हो, बस वो वाली निकाल के एक बताओ लोगों को, उससे ताकि मेरी फॉलोइंग हो जाए, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बस। तो ये आप देखिए, आवे का हवा क्यों बिगड़ रहा है, ख्वाहिशात के बंदे, ख्वाहिश है पीछे, इन्होंने ख्वाहिश को अपना इलाह बनाया हुआ है। ख्वाहिश जिधर को कहती है उधर को चल पड़ते हैं, जिधर से ख्वाहिश पूरी होगी ना वो काम चाहे दुनिया का बदतरीन काम ही क्यों ना हो वो करने को तैयार है खड़े। ख्वाहिश पूरी हो रही है ना। इसी तरह कई लोगों को शोहरत चाहिए होती, शोहरत के पीछे इतने पागल हुए जाते हैं कि वो अजीबो गरीब ऐसे काम तो मरने की कभी सोच ही नहीं आती अल्लाह ये क्यों कर रहे हैं, वो असल में पीछे क्या है, वो काम करें नहीं करें लेकिन असल पीछे क्या है, शोहरत की ख्वाहिश। इस तरह मुझे लोग बहुत देखेंगे, मेरी वीडियो बहुत पॉपुलर होगी, कहाँ मेरा नाम चलो कुछ किसी तरह भी हो चाहे बदनाम होके हो लेकिन हो जाए नाम। फिर आप पॉलिटिशियन को देखें, सिर्फ इस चीज की ख्वाहिश कुर्सी की उनको कहां तक गिरा देती है। आप हर एक जगह में देख लें, पीछे आपको यकीनन ख्वाहिश नफसी मिलेगी जिसकी वो इतात कर रहे हैं। आप फलात अदक करो, फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। और चले हम सबको छोड़ दें, हम सिर्फ अपनी बात करें, अगर कहीं हमने भी अपना इला अपनी ख्वाहिश को तो नहीं बनाया हुआ, तो ख्वाहिश हमें ड्रैग करती है जिधर को चाहे ले जाए। आज दिल किया तो ये कर लिया, कल दिल किया तो कुछ और कर लिया, दीन के मामले में जो दिल किया वो किया, और अल्लाह ताला ने जो फराइज रखे हैं उनको नहीं देखा, क्योंकि वो दिल नहीं मेरा करता, उसके अंदर मन को मारना पड़ता है, उसके अंदर तकलीफ होती है, उसके अंदर कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, उसके अंदर मैं इतनी इन नहीं रहूंगी, इसलिए उसको बिल्कुल साइड पे रख दे, उससे बिल्कुल आंखें बंद की नहीं है। जो जो मुझे इजी लगते हैं ना, चलो एक खुदा को भी खुश कर लेते हैं ना, तो वो उतना सा सिर्फ वो कर लिया जिसमें कोई पेन ना हो। वो कहते हैं नो पेन नो गेन, यहाँ पे कहते हैं पेन ना हो बस गेन जरूर हो जाए। एक्सरसाइज भी आप करने जाते हैं ना तो वो कहते हैं नो पेन नो गेन, इससे गुजरोगे तो फिर ही तुम कुछ हासिल कर सकोगे। लेकिन दीन के मामले में हमारा क्या रवैया है, नो पेन लेकिन ऑल गेन। अब आप देखें ये जो हमने वेट लूज करना, वेट लूज करने के लिए इंसान क्या करता है, ऐसा नहीं कि वो खाता ही नहीं मार ही जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। अब आप कहेंगे लो क्या फिर हम अपनी ख्वाहिश ही ना कोई पूरी करें, अब हमारा क्या कसूर है, इस तरह से हम क्या करें फिर। नहीं, आप देखें उससे आप सीखें, वो खाता है लेकिन वो अपने आप को कितना डिसिप्लिन करता है, मैंने ये नहीं खाना ये नहीं खाना, हर चीज को वॉच करेगा भाई इसमें कितनी कैलोरीज है, इसमें कितनी फैट है, इसमें कितना मेरा नुकसान है, इसमें मेरा वेट गेन हो जाएगा, वो सारा कुछ देख के फिर सिलेक्टेड चीजें खाएगा, वक्त पे खाएगा, इतनी देर मैंने इतना वक्फा देना है हर खाने के दरमियान, उस तरह से खाएगा, अपने आप को डिसिप्लिन करता है ना। इसी तरह हमने नफ्स को डिसिप्लिन करना है, ये नहीं कि सारी ख्वाहिशात मार ही दी हमने, बस हम एक तरफ पहाड़ों में बैठ गए हैं, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, अपनी हालत बुरी बना ली, इस तरह करने को कोई नहीं कह रहा। लेकिन आप इससे सीखें, जैसे वो बंदा खा भी रहा है लेकिन उसने अपने आप को डिसिप्लिन किया क्योंकि वो कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए उसका वेट, इसी तरह कहीं हमारा नफ्स आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, हमने इसको बांध के रखना है, हमने इसको कंट्रोल करके रखना है, तू जो कहता है वो नहीं मैं करूंगी, मेरा अल्लाह जो कहता है मैं वो करूंगी, इस तरह के रवैये के साथ इसको लेके चलना। तुझे मुश्किल हो रही है उठने में, तुझे मैं सीधा करती हूँ, चल उठ, अपने आप को ये कहें, तुझे मुश्किल हो रही है ये करने, ये काम अल्लाह का कुम है, क्यों नहीं करेगा तू, आज से मैं हिजाब लूंगी, मुझे नहीं किसी की परवाह। वो डराएगा, अरे वो फिर क्या कहेगा, अरे वो फिर क्या कहेगा, कोई परवाह नहीं। इस तरह नफ्स कंट्रोल किए जाते हैं, इस तरह नहीं कि हम मिन मिन आते हुए उसके सामने ही लेट जाए और कहेंगे अच्छा जी हजूर आपने फरमा दिया, आपका फरमान सर आंखों पे, अल्लाह का हुक्म तो मैंने पढ़ लिया वो साइड पे डाला हुआ है, मुझे पता है वो क्या है, छोड़ो उन चीजों को, अब हम 1400 साल पहले नहीं जा सकते। नहीं, इसको सीधा करें, ये हमारी सारी जिंदगी की मेहनत है, ये एक दिन की नहीं है ना, जो सोचते हैं कि कुरान पढ़ लिया, हाँ जी अब हम क्या करें, कुछ लोग ऐसे पूछते हैं ये मैंने तो सारा कुछ कर लिया अब जी करें क्या, वो जो एक हिजाब ऊपर सर पे ले लिया उसको समझ लिया सब कुछ कर लिया, मैंने अबाया पहन लिया, कोई बहुत ही ज्यादा जिसने ने आगे बढ़ गया वो नकाब कर लिया, जी मैंने तो सारा कुछ कर लिया अब क्या करूं, हाँ जी सारा कुछ कर लिया नहीं है, ये नफ्स को तो टेम करना है, अभी इसको अपने काबू में लाना है, इसको सुधाना है, को सीधा करें तीर की तरह, कि ये मुझे फिर बुराई की तरफ ना लेकर जा सके। नफ्से हमारा बुराई की तरफ लेकर जाता है, उसको नफ्से मुतमाइना बनाना है, तभी तो हमारे लिए निदा आएगी, या तू नफ्सुल मुतमाइना। अगर हम अपने लिए चाहते हैं नफ्से मुतमाइना, चल अपने रब की तरफ, वो तेरे से राजी, तू उससे राजी, चल जन्नत में दाखिल हो जा। ख्वाहिश तो हम सबको है, पेन कितना उठाना है इसको सुधाने के लिए, वो कुछ नहीं। तो ये नहीं होगा, इसको सीधा करना है, इसको नफ्से मुतमाइना बनाना है, बस ये मुतमाइन हो जाए अल्लाह की रजा पे, उसके हर हुक्म के ऊपर, चाहे मुझे इसके लिए अपनी ख्वाहिश का गला काटना पड़े, चाहे दोनों लोगों की बातें मुझे कितनी सुननी पड़े, चाहे मुझे कितना ही मुखालफत का सामना करना पड़े, मेरा नफ्स इतना मेरे काबू में आ जाए कि फिर ये मुझे तंग ना कर सके। क्या तो ये है ये आयत, जो बहुत अहम आयत है। वकालू, और फिर वो कहते हैं, जो ऐसे नफ्स के बंदे होते हैं, वो कहते हैं, हयातु न दुनिया, कोई नहीं जी, हमारी ये दुनिया की जिंदगी ही है, नमो तो वह नाहिया, हम मरेंगे जिएंगे, वामा युहलिकुना इल्ल दहर, और हमें तो हलाक नहीं करता मगर जमाना। ये क्या कि भाई अल्लाह ताला ने एक मौत लिखी है, उस वक्त आती है मौत, अरे सा भाई हम पैदा हुए हैं, ये हमारी जिंदगी है, मदर नेचर है, कुदरत का खेल है जी, अब बूढ़े हो तो मरना ही है ना, या बीमारी आ गई तो फिर उससे मर गए, एक्सीडेंट हो गया उससे मर गए, इससे हो गया, तो ये तो कुदरत का खेल है, ये मदर नेचर, यानी अल्लाह ताला कोई नहीं है, अल्लाह ताला कोई नहीं है, ये सिर्फ बस नेचुरल एक प्रोसेस है ना जी। देखिए ना, एक इंसान जिंदगी गुजारता है तो उसके बाद उसने मर ही जाना होता है, वो ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला हमें पैदा करता है और मारता है, वो कहते हैं जमाना दहर, इसी से तो दहरियत निकला ना, एथिज्म, कि बस जमाने का उतार चढ़ाव है जी, रद्दो बदल है जमाने का, ये उनकी यही थियोरी होती है, साइंस ये कहती है, ये कहती है, ये जो कौमें भी तबाह हुई उनके ऊपर ये नेचुरल डिजास्टर्स आए तो इस वजह से हुई। आप देखते हैं जब बोलते हैं, इसलिए उलमा इससे भी मना करते हैं, जब ये बोलते हैं ना कभी खबरों में, कुदरत का खेल, कुदरत की देवी, व्हाट इज दिस, आप ये क्यों नहीं कहते अल्लाह ताला ने ये किया, वो तो अल्लाह का नाम नहीं लेना, कुदरत उन पे मेहरबान हो गई, व्हाट इज कुदरत, आप में और उसमें क्या फर्क रहा जो यहां बैठ के बोल रहा है कि मदर नेचर ने ऐसा कर दिया, कुदरत क्या चीज है, अल्लाह क्यों नहीं कहते, यानी कुदरत कहने का मतलब होता है कि नेचुरली ये सारा कुछ हो रहा है, नेचुरल एक फिनोमेना है, उससे ये है, और कुदरत की देवी क्या होती है, ये हमारे मुसलमानों के ही बातें हैं, कई दफा खबरों में सुनी, और यहाँ के लोग मदर नेचर कह देते, क्योंकि उन्होंने भी गॉड तो कहना नहीं, तो ये भी ये कहते हैं कि भाई देखो ये दुनिया की जिंदगी इसी तरह हम मरते हैं जीते हैं जी, ये तो एक प्रोसेस है, वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, इनके पास कोई इल्म नहीं है, इनके पास नहीं, इनके पास का कोई इल्म, ये ऐसे ही बातें करते जा रहे हैं, इनहुम इल्ला यदुनून, ये बस गुमान कर रहे हैं कि ये सब जमाने के फेर हैं, इनके पास क्या दलील है कि ये जमाने के फेर, ये गुमान ही है ना। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, जब इनके पास हमारी आयात पढ़ी जाती है बिल्कुल खुली, अल्लाह ताला के कुरान की से तिलावत की जाती है इनके पास, इनके अकीदे का रद्द किया जाता है, इनको बताया जाता है कि कयामत बरहक है, अल्लाह ताला ने खड़े करना है तुम्हें, तो माँ कहना हुज्जत हूं, तो नहीं होती इनके पास कोई दलील, इनके पास कोई दलील नहीं होती एक्सेप्ट एक चीज के, जिसको ये अपनी दलील बना के पेश करते हैं, हालांकि वो कोई दलील नहीं है, ये इसको भी हुज्जत कह के इनके ऊपर टॉन्ट किया गया, तंज किया गया कि ये है इनके पास जो दलील, क्या कहते हैं आगे से, अनकालू तू तुम सौदी, कहते हैं ले आओ ना फिर हमारे हमारे बाप दादा को, अगर तुम सच्चे हो, नहीं अगर तुम इतना ही कहते हो क़यामत आनी है अल्लाह ताला ने खड़े करना, तो फिर हमारे बाप दादा को जिंदा करके ले आओ, सिर्फ इनके पास ये दलील है, अपनी बात की कोई दलील लाओ ना, तुम कहते हो खुद ही सारा कुछ बन गया, हमने इसी तरह मर जाना है, खत्म हो जाना है, कुछ नहीं, दोबारा कोई खड़े होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर है तो फिर हमारे बाप दादा को जिंदा करके दिखाओ, तो किसने कहा कि यहाँ पे जिंदगी होगी, कहा गया कयामत आएगी उसके बाद अल्लाह ताला जिंदा करेगा, कहते नहीं, इसका एक ट्रेलर हमें पहले यहाँ पे दिखाओ, कुलिल्लाहु युहयीकुम, कह दीजिए अल्लाह ही है वो जिंदा करता है फिर मौत देगा तुमको। अच्छा ये बताएं, वो ऐसा क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया जो ख्वाहिशात नफ्स के बंदे होते हैं वो ये उनकी बात है कि वो ऐसा कहते हैं। क्यों, कुछ आपको समझ आया? इसलिए ऐसा कहते हैं कि अगर कहेंगे अल्लाह ताला ने पैदा किया और मर के भी उसके पास चले जाना, और अल्लाह ही यह मौत देता है, अल्लाह ही यह जिंदगी देता है, जैसे यहाँ पे आपके कह दीजिए अल्लाह ही जिंदा करता है एक मौत देता है, सुम्मा यजमाओ को मिला योमिल कियामती ला रही बफी पे, तुम्हें जमा किया जाएगा उस दिन कयामत के दिन उस घड़ी में जब जिसके बारे में कोई शक नहीं है ना। तो ये कहते नहीं जी आप खड़ा करके दिखाओ फिर बाप दादा को हमारे। तो ऐसा क्यों, वाय? इसलिए क्योंकि अगर ये मान जाएं तो अल्लाह ताला ने पैदा किया, अल्लाह ताला मौत देने वाला, उसके पास फिर जमा होना है, एक दिन कयामत है, ये जमाना नहीं हमें मारता, अल्लाह के हम कंट्रोल में हो, उसके पास हमें जाके हाजिरी देनी, फिर तो कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, मन को मारना पड़ेगा, फिर मनमानियां तो नहीं हो सकती, फिर वो तो नहीं हो सकता जो मेरा दिल करता है, फिर वो तो नहीं हो सकता, तो अल्लाह की माननी पड़ेगी, वो तो हमने माननी नहीं, वो तो हमें मुश्किल लगता है, उस तरफ तो हमने आना ही नहीं। आपने देख लेना कि एक गॉड या अल्लाह ताला का नाम जो है वो लेना भी मुसलमानों में अब कितना मुश्किल हो गया, कि अल्लाह का नाम ले के बताया जाए कि अल्लाह ही है हमें जो करता है, अल्लाह ही है हमें जो मौत देता है, अल्लाह ताला ही हमारे सारे काम, ये भी खत्म हो गया। अगर बारिश हो रही है तो वो मेहरबान हो गई देवी, अगर किसी के पास पैसा आ गया लक्ष्मी देवी इसके पर मेहरबान हो गई। अच्छा जी वो इस तरह की बातें करते हैं, यानी अल्लाह का नाम भी बीच में से हटा दो, अल्लाह ताला की रहमत उन पे बरसी, ये आपने कभी खबरों में सुना कि कहीं बारिश के लिए वो ये कह रहे हैं? तो ये बात, क्योंकि जब अल्लाह ताला का जिक्र बीच में आ जाएगा, जब उसकी जात को बीच में ले आओगे, फिर ख्वाहिशात कैसे पूरी करेंगे? फिर इंसान के अंदर ना एक ये चीज है कि वो अपनी मनमानी करना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं जैसे मैं चाहूं बस वैसे जीऊं, इस वजह से ये सारे स्लोगन्स बने हैं, मेरी मर्जी, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिंदगी एक दफा मिली है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये सारे इसलिए बने हैं क्योंकि वो जो अंदर की ख्वाहिश है ना कि मैं वैसे जीऊं जैसे मैं चाहती हूं, मुझे कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, मुझे कोई ना कहे ये ऐसे करो वैसे करो, मेरा दिल करे तो करूं, दिल ना करे ना करूं। जैसे लोग कहते हैं ना, मुझे तो इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आती, वो क्या है, वो अपना मन नहीं मान रहा ना, इसलिए लॉजिक भी नहीं आपको समझ आएगी, आएगी नहीं, फिर तो खत्म अल्लाह वाला कुलूबी वाला समीम वो वाली बात हो जाएगी, या जैसे यहां पे कहा गया, फिर तो कानों पे भी पर्दे पड़ गए, फिर समझ आनी कैसे है। तो ये जो मनमानी करने की ख्वाहिश है ना, ये फिर आखरत का इनकार ही करवाएगी, और क्या करेगी, क्योंकि या तो आखरत पे बिलीफ हो सकता है या मनमानियां हो सकती हैं, एक ही चीज होती है, तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से, जो आखरत के ऊपर यकीन कर लेगा वो तो मनमानी बेचारा कैसे कर सकता है, मुझे तो हर वक्त इसके तो जान इसी पे हलकान रहेगी कि अल्लाह ताला तेरे आगे खड़े होना मैं क्या करूं, अल्लाह मैं तेरा सामना कैसे करूंगी, अल्लाह मेरी जिंदगी तो इस काबिल नहीं, करके भी वो रोता रहेगा, उसको तो फिक्र इतनी रहेगी, क्यों हमारे असलाफ रोते रहते थे, क्यों इतने परेशान रहते थे, क्यों आखरत की फिक्र में कहते थे काश एक परिंदा होता, काश मैं एक दरख्त होता जिसको काट दिया जाता, काश कयामत का दिन मैं ना देखता, मेरा तो ये बराबर सराबर भी हिसाब हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए काफी है, वो क्यों ऐसे कहते थे? वो इसलिए कि आखरत का यकीन था ना, जब आखरत का यकीन ना हो तब भी इंसान मनमानियां करता है, तब भी इंसान इनकार करता है, तभी इंसान का इम्तिहान ही यही है ना, कि वो इम्तिहान इस दुनिया में है ही ये, कि वो अल्लाह ताला के सामने खड़े होने को याद कर रख के जिंदगी गुजारता है या अपनी मनमानी वाली जिंदगी गुजारता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने खुली छुट्टी दे दी ना, चाहे तुम अपनी मनमानी करो, चाहे तुम अल्लाह ताला की बात मान के चलो, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये ओपन रख दिया, ये तुम जिधर चाहो, तुम जौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहो कर लो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वला कि अक्सर अन्नासी ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते कि इस चीज का इल्म नहीं रखते, अल्लाह ही जिंदगी देने वाला है, वो ही मौत देने वाला है, मौत भी उसके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं, डॉक्टरों के हाथ में नहीं, अस्पतालों के हाथ में नहीं, जिंदगी भी उसी के हाथ में और मौत भी उसी के हाथ में। तुम उसी के भेजने से दुनिया में आए हो, उसी के ले जाने से दुनिया से जाओगे। अल्लाह अकबर। और उसी की मर्जी से जिस दिन वो चाहेगा उठा के खड़ा करेगा। तो वो ऐसी बातें करते थे, और ऐसी बातें आम इंसान के मुंह से नहीं निकल सकती। ये जो सारी जितने भी आप ये जो बुराइयां बड़ी बड़ी सर उठा रही है ना, ये आजकल जो जैसे मैंने कहा कि गेज है और ये है, ये सारी इसीलिए इतनी ऊपर जा रही कि आखरत के ऊपर ईमान खत्म हो गया, आखरत के बारे में लोगों का अकीदा नहीं है या बिल्कुल कमजोर है। अल्लाह ताला हमें इन आयात से सीखने की और अमल करने की इनके ऊपर तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه قلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى